जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि है। मैं राधा रानी के संबंध में बोलने का पात्र नहीं हूं, लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से, आप वैष्णवों के स्नेह से आज हम लोग राधा रानी के विषय में कुछ वार्ता करेंगे। कृष्ण के विषय में कोई कुछ बोल सकता है, कि राधा रानी के विषय में बोलने में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत से एकाध दो प्यार लेंगे, पहले राधा रानी के सैद्धांतिक रूप को समझने का प्रयास करेंगे, राधा रानी कौन है, उसके बाद में राधा रानी के जन्म प्रकरण को हम वार्ता करेंगे, और उसके बाद में एकाध दो राधा रानी के लीला प्रकरण को हम लोग सुनेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना देर तक सुनना चाहेंगे। तो हम अब शुरू कर रहे हैं, आज फास्टिंग है ना, फास्टिंग तो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। राधा कृष्णा एक आत्मा दुई देह धारी अन्योये विलासे रस आस्वादना करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योनय विलासे रस आस्वादन करी, अन्योनय विलासे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योनय विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योनय विलासे रस आस्वादन करी। और कोई माता जी राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा और कृष्ण एक एक आत्मा आत्मा दुई दो देहा शरीर धरी धारण किए अन्योन्य एक दूसरे से विलास आनंद के लिए रस प्रेम रस के लिए आस्वादन करी आस्वादन करने हेतु। तो अंग्रेजी में इसको मैं पढ़ लेता हूं, बाद में हिंदी में बता करेंगे। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस इस भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। राधा एंड कृष्णा आर वन एंड द सेम बट दे हैव एज्यूम्ड टू बॉडीज दस दे एंजॉय इच अदर टेस्टिंग द मेलो ऑफ लव। पर्पट द टू ट्रांसडेंटलिस्ट राधा एंड कृष्णा आर ए पजल टू मेटेरियलिस्टिक। The air description of Radha and Krishna from the diary of Sri Sarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs a great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. One is enjoying in two. Sri Krishna is the potent factor. And Srimati Radharani is the eternal potency. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and potency. They are identical. We cannot differentiate between one and the other, any more than we can separate fire from heat. Everything in the absolute is inconceivable in relative existence. Therefore, in relative cognizance, it is very difficult to assimilate the truth of the oneness between the potent and the potency. The philosophy of inconceivable oneness and difference pronounced by Lord Chaitanya is the only source of understanding for such intricacy of transcendence. In fact, Radharani is the eternal potency of Sri Krishna, and she eternally intensifies the pleasure of Sri Krishna. Impersonalists cannot understand this without the help of Mahabhagavat devotee. The very name Radha suggests that Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comfort of Krishna. As such, she is the medium transmitting the loving, living entity serving to Sri Krishna. Devotee in Vrindavan therefore seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving service of Sri Krishna. Lord Chaitanya Mahaprabhu personally approaches the fallen conditioned soul of the Iron Age to deliver the higher principle of transcendental relationship with the Lord. The activities of Lord Chaitanya are primarily in the role of pleasure-giving potency of his eternal potency. The absolute personality of Godhead Sri Krishna is the omnipotence for
form of transcendental existence, knowledge and bliss in full. His eternal potency is exhibited first as Sat or existence, or in other words, as the person that expands the existence function of the Lord. When the same potency displays full knowledge, it is called Chit or Samvit, which expands the transcendental form of the Lord. Finally, when the same potency plays as a pleasure-giving medium, it is known as Haladni or the transcendental blissful potency. Thus, the Lord manifests His transcendental potency in three transcendental divisions.
Om Ajnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurjanimilitandena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Agadaita Gadadha Srivasadi Gaurabhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimati Radharani ki jai.
To aaj Radharani ka avirbhav tithi hai. Hum log Radharani ke swarup ko samajhne ka prayas karenge. ऐसे प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी के अनुगत्य में उसी भाव में ज्यादा जोर नहीं दिए राधा रानी के संबंध में बतलाने और जानने के लिए, क्योंकि प्रायः सामान्यतः लोग राधा रानी और कृष्ण के संबंध को समझ नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी कई एक बार इस बात को बतलाए कि राधा रानी को समझने के लिए पहले कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है, और कृष्ण को समझने के लिए राधा रानी का कृपा प्राप्त करना जरूरी है। राधा रानी के कृपा से हम कृष्ण को समझ सकते हैं, कृष्ण का सेवा कर सकते हैं, सॉरी सेवा कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के कृपा से हम राधा रानी को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं गीता में, वेदाहम संतिदानी, मैं सब कुछ जानता हूं सही सही ढंग से। जो भगवान सब कुछ जानते हैं सही सही ढंग से, वे भगवान एक चीज को नहीं जानते हैं, और वह है राधा रानी का प्रेम। राधा रानी के प्रेम को जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादनी शक्तिर स्मार एकात्मनौ अपि भुवौ देह देहो गतौ तनौ। दो देह मात्र है लेकिन एक ही व्यक्ति है, आत्मा एक है, केवल दो देह हैं। तो राधा रानी के प्रेम को स्वयं कृष्ण भी नहीं समझ सकते हैं, राधा रानी को कृष्ण भी नहीं समझ सकते हैं। वे कृष्ण भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए राधा रानी को समझने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं हम लोग कि हम लोग किस खेत के मूली हैं, हम कैसे राधा रानी को समझ सकते हैं। जो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति भी तमाल कृष्ण जी सोएंगे तो नहीं समझेंगे, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति भी राधा रानी को समझ नहीं पा सकता है, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि भगवान विष्णु, विष्णु है इधर, जल्दी आओ जल्दी जल्दी,
हम अब बुढ़ापा को भूल जाता हूं, एक असिस्टेंट चाहिए कुछ काम करने के लिए, फसलों को सुख बताने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में कि लोग राधा रानी को जानना चाहते हैं, पहले हमें कृष्ण को जानना चाहिए, और कृष्ण को जानेंगे तो कृष्ण हम लोगों को राधा रानी से परिचय करा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हम जाने और उस व्यक्ति से अभी जान पहचान जब हो या अच्छी तरह से, तो व्यक्ति अपने आप इंट्रोड्यूस कराएगा कि मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, पहले बार उसके घर पर गए और उसकी पत्नी से बात करने लगे, उसकी बेटी से बात करेंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा, हमको दरवाजा दिखाएगा, चलो उधर जाओ। तो ऐसे ही बिना कृष्ण को जाने कोई राधा रानी को जानने का प्रयास करता है तो कृष्ण उसको दरवाजा दिखाते हैं, चलो बाहर आओ। भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिए, अर्जुन से हम बड़े हैं क्या, वहां राधा रानी के विषय में कहीं बातें नहीं किए, कहीं बात किए गीता में नहीं बात किए हैं। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, राधा रानी से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। कृष्ण के सेवा करने में राधा रानी बड़ी निपुण है, उनके समान कोई सेवक नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं राधा रानी दी बेस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्ण, गोपीर भर्तु पद कमलयो दासानुदासानुदास, सबसे अच्छे। राधा रानी कौन है, भगवान शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य बताए हैं आग और आग का ताप। आग में दो चीज होता है, हीट और लाइट, सूर्य और सूर्य का प्रकाश। सूर्य को हम जान सकते हैं कैसे, प्रकाश से, और प्रकाश का अस्तित्व किससे है, सूर्य से, दोनों में अन्योन्याश्रय है। तो ऐसे ही कृष्ण को जानने के बाद हम राधा रानी को जान सकते हैं और राधा रानी की कृपा से कृष्ण का हम सेवा कर सकते हैं। हम लोगों का स्वरूप है सेवा करना, जीवर ये स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सेवक हैं। तो सेवा कैसे करनी चाहिए वो हम राधा रानी से जान सकते हैं, और राधा रानी के प्रतिनिधि जो हैं वे हमारे आचार्यगण हैं, गुरु वर्ग हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो राधा रानी कृपा से हम जान सकते हैं। तो भगवान शक्तिमान है, उनकी तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। जो जीव है वह तटस्था शक्ति का प्रकाश है, जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेद अभेद है? भेद अभेद प्रकाश। तुम नजदीक बैठो विष्णु, भूल जाता हूं तो बताते रहना। जीव जो है वो भगवान का तटस्था शक्ति है, बहिरंगा शक्ति माया है जिसके तीन गुण है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये बहिरंगा शक्ति इस भौतिक संसार में विद्यमान है सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से, और इसी तीन गुणों में जीव जो विभिन्न प्रकार का देह ग्रहण किए हैं वे यहां पर भ्रमण करते हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान कहते हैं गुणमयी है माया है, ये बहिरंगा शक्ति है। और है बाद में अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति भगवान का साक्षात स्वरूप है। अंतरंगा शक्ति के भी तीन गुण हैं, वो कहलाते हैं संबित, संगित और आह्लादिनी। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, संबित संहित और आह्लादिनी में जो संबित शक्ति हैं वो हैं बलराम जी, जुटाने वाले, जो कुछ जरूरत पड़े, नंद यशोदा गोकुल ब्रज ये सब जितने हैं बलराम जी के शक्ति हैं, सब कृष्ण के ही शक्ति हैं, कि कृष्ण द्वितीय स्वरूप हैं भगवान के बलराम जी के रूप में। बलराम जी तो वे संबित शक्ति हैं, जुटाते हैं, और उनका शेप देना, आकार देना, संबंध देना कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, इत्यादि इत्यादि जो है वह काम करते हैं कृष्ण, उसे कहते हैं संगीत, जुटाना, संबंध स्थापित कराना। और आह्लादनी शक्ति जो है वह हैं श्रीमती राधा रानी। तो सच्चिदानंद में जो सत हैं वो हैं बलराम जी, जो चित हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो आनंद हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। मैं कई एक बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि हम लोगों को खीर बनाना हो तो खीर बनाने के लिए वस्तुएं चाहिए, चावल, दूध, कड़ाही, चीनी, ड्राई फ्रूट इत्यादि इत्यादि। जो जुटाता है जिस शक्ति से वो कहलाता है संबित शक्ति, जुटाने वाला, वो है बलराम जी। जो खीर बनाता है या रसगुल्ला बनाता है, उसका शेप देता है, वो है संगीत, वो है भगवान श्री कृष्ण। और स्वीट राइस मीठा है, नमकीन है, क्या है, जो आनंद लेने का जो काम है वह है श्रीमती राधा रानी, जो आनंदमयी स्वरूपा है, हलादनी शक्ति है। तो आज हम उन हलादनी शक्ति के संबंध में वार्ता करेंगे, श्रीमती राधा रानी के संबंध में। आनंद, आनंद सबको चाहिए। संसार में कोई ऐसा नहीं है इसे आनंद नहीं चाहिए। कोई है जो कहे कि आनंद नहीं चाहिए? सबको आनंद चाहिए, क्योंकि आनंद भगवान में है। रसो वही सह, भगवान रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, भगवान रसराज हैं, और हम उनके अंश हैं, इसलिए हमें भी आनंद चाहिए। आनंद अकेला नहीं मिलता है, आनंद कई एक प्रकार का है। ये कथा कहने और कथा सुनने का भी आनंद है कि नहीं? मैं अकेला यहां कथा कहता रहूं, कोई आप लोग यहां पर चले जाओ उठ करके, आनंद है कथा में? हम भी उठकर चले जाएंगे, आनंद नहीं आएगा। जब कुछ लोग रहे तब आनंद आता है, अकेला कथा करने में कोई आनंद नहीं आएगा। कथा कहना अच्छा है लेकिन सुनने वाला चाहिए, तब आनंद आता है। तो भगवान आनंद का अकेले नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और उसी आनंद के खोज में भगवान तो हैं अकेले शुरू में, अहमे वाग्रो समी वाग्रो अहम त्रवस प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। भगवान सबसे मूल हैं, वे आदि हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लेकिन अपने आनंद के लिए सबको विस्तारित किए। क्या वस्तुओं के विस्तार से आनंद आ सकता है? इतने हजार सुनने वाले हों, केवल मात्र सुनने वालों के रहने से आनंद आ सकता है? हजार सुनने वाले, कोई मोबाइल पर बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कहने वालों को आनंद आएगा? अरे यहां सोते हो तो मैं जगाता हूं भाई, जल्दी जग जाओ, उसमें भी आनंद निरानंद हो जाता है। देखो ये सो रहा है बगल में, रात पर पहरा दिया है लगता है, जगाओ उसको।
वही बात कर रहा हूं।
अटेंटिवली कोई सुनता हो, नोट बनाता हो, कहां भाई सुन रहा है, तब कहने वालों को भी तो आनंद आता है। तो वैसे ही जब तक से भाव ना हो तब तक से रस का आनंद नहीं आ सकता है। वो रस निरस हो जाएगा यदि भाव ना हो। तो कृष्ण रसो वैसह, कृष्ण रस है, लेकिन जो भाव आता है उस रस का आस्वादन करने का, वह है श्रीमती राधारानी, वह है आह्लादनीय शक्ति। मैं ट्राई कर रहा हूं फिलॉसफी को सिंप्लीफाई कर करके बतलाने का आप लोगों को। बुखार आप लोगों को लगता है ना कभी कभी, बुखार जब छूट जाता है तो उसके बाद खाने पीने में वो रस नहीं रहता है ना। चावल दाल सब सब्जी सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन उसमें रस नहीं, कहते निरस हो गया, जिह्वा में रस नहीं है। तो रस होना जरूरी है, और रस जो है कृष्ण में है। तो कृष्ण के संबंध में कथा वार्ता करना वो रसमयी है, लेकिन जब भाव रहेगा तब उसमें आनंद आएगा। भगवान गीता में कहते हैं मच्चीत मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरि कथा में रस है, कृष्ण कथा में रस है, लेकिन जब से भाव न हो, मत चीता लोग न हो, जब तक से हमारा चित अनडिवाइडेड अटेंशन उस कथा में जब न हो तो भाव प्रकट नहीं होगा, और जब भाव प्रकट नहीं होगा तो आनंद प्रकट नहीं होगा। तो बिना भाव के रस भी निरस हो जाता है। तो कृष्ण रसो वैसे हैं, रस के आगार हैं, लेकिन जब तक से भाव प्रधाना, भाव शक्ति श्रीमती राधा न हो, तब तक से उस वहां आनंद नहीं आएगा। रस के विषय हैं कृष्ण और आश्रय हैं श्रीमती राधा रानी। न भाव ही नोस्ति रसो न भाव रस वर्जित परस्पर कृता सिद्धिर अयनयो रस भाययो। नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है न भाव हिनो अस्ति रसो है, रस का भाव से अनिवार्य संबंध है। भाव बिना रस नहीं और रस बिना भाव नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु रस और भाव दोनों हैं, रस और भाव दोनों हैं। तो जो आनंद का विषय है वह तब संभव है जब भाव हो। तब उदाहरण दिया गया है कि रत्न का कोई पेटी हो, खूब हीरा जवाहरात रखा हुआ है, लेकिन चाबी ना हो तो क्या फायदा। उसमें रत्न है हम जानते हैं, बहुत रत्न है, बहुत धनी हो जाएंगे, लेकिन चाबी नहीं है। तो बिना चाबी के उस रत्न का कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार से आनंद का विषय रस है, लेकिन यदि भाव रूपी चाबी नहीं है तो उस आनंद का कोई उपयोग नहीं। तो श्रीमती राधा रानी वह चाबी है, भाव सुबलिता। आनंद तब आता है जब राधा रानी रहती है। जीव का एकमात्र लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। हम सब लोग आनंद चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि आनंद न चाहता हो,
लेकिन उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है भगवत प्रीति से, और भगवत प्रीति होती है निस्वार्थ सेवा करने से। निस्वार्थ सेवा करने से भगवत प्रीति होती है। जब निस्वार्थ सेवा करेंगे तो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा राधा रानी की कृपा से, जैसे राधा रानी निस्वार्थ सेवा करती है। थोड़ा हलादनी शक्ति के संबंध में हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि हम लोग पता है कि राधा रानी जो है वो हलादनी शक्ति है, तो उसी का वर्णन हम लोग यहां पर कहेंगे। से दुई एक एक चैतन्य गोसाएं रस आस्वादितता दोह देहो हैल एक ठाएं। उसी रस का स्वादन करने के लिए भाव और रस मिला करके भगवान एक देह धारण किए चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। इति लागी आगे करी तार विवरण जहां हईते हय गौरेर महिमा कथन। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते उसी रस और भाव का मैं वर्णन करने जा रहा हूं जो कि अन्य कोई नहीं साक्षात चैतन्य महाप्रभु है। भगवान कृष्ण को भागवतम में आह्लाद कहा गया है, आह्लाद जातो आह्लाद महामना है भागवतम में कृष्ण को आह्लाद कहा गया है, लेकिन राधा रानी जो है वो आह्लादनी है। आह्लाद में आह्लाद संचारित करने वाला, जो आह्लाद का मालिक है, जो आनंद का स्वरूप है, उसमें भी आनंद देने वाली जो है वो है श्रीमती राधा रानी। राधिका है न कृष्णे प्रणय विकृति स्वरूप शक्ति हलादनी नाम जहार। श्रीमती राधा रानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णा इज लव, सी इज इटर्नल एनर्जी कॉल हलादनी। हलादनी कराय कृष्ण आनंद आनंद स्वादन, हलादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। यह जो आह्लादनी शक्ति है भगवान इससे दो कार्य करते हैं, एक तो रस का आस्वादन करते हैं और दूसरा भक्तों के भक्ति का पोषण करते हैं। हम लोग कहते हैं बहुत दिन से जप करते हैं कोई आनंद नहीं आ रहा है, भक्ति करें कोई आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि राधा रानी की कृपा नहीं है। राधा रानी की कृपा से ही भक्ति में आनंद आएगा। सचिदानंद पूर्ण कृष्ण कृष्ण रसरूप एक ही चित शक्ति तारद हरे तीन रूप। इसका मैं वर्णन आप लोगों को पहले कर दिया संक्षिप्त में। तो ये आह्लादनी शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, और यह जो आह्लादनी शक्ति हैं इनका वर्णन किया गया है कि वे नित्य रास में निवास करती हैं, कृष्ण को आनंद देती हैं और भक्तों के भक्ति के पोषक हैं। जो भी आनंद है चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो चाहे मेटेरियल वर्ल्ड में हो, वो सब आनंद राधा रानी के कृपा से प्राप्त होता है, वो आह्लादनी शक्ति से। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भौतिक संसार में एक लड़का और लड़की के बीच में जो आनंद होता है, चाहे जो हम खाते हैं उसका आनंद होता है, क्या यह भी राधा रानी है क्या? हां यह भी राधा रानी है, लेकिन विकृत रूप से। तो जो श्रीमती राधा रानी है, जो आराधनी शक्ति है, वो कृष्ण के नित्य रास विलास का एकमात्र कारण है। आराधनी शक्ति के प्रकाश से ही भगवत में भगवत आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है, जीव आनंद प्राप्त करता है। विश्व में प्राकृत जो आनंद है वो भी प्राप्त होता है राधा रानी कृपा से। उदाहरण दिया गया है गोमुख से जब गंगा जी निकलती है, वह शैल प्रवाहनी गंगा स्वच्छ रूप से आती है, सुनिर्मल होती है, सुज्वल होती है, लेकिन जब भूखंड में आती है तो यहां पर मिट्टी से मिल करके सम्मिश्रित होकर के मटमैली हो जाती है। गंगा जी गौमुख से बिल्कुल शुद्ध निकलती है, अभी जाओ गंगोत्री तक जाओ, कितना शुद्ध है। लेकिन ऋषिकेश के बाद, ओ मिट्टी से मिलने के बाद वह मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार हलाग्नि शक्ति स्वच्छ समुज्ज्वल शाश्वत आनंद धारा प्राकृत प्रदेश में जब उतरती है तो त्रिगुणात्मक सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इसके संसर्ग में आने से कुत्सित क्षणभंगुर और प्राकृत आनंद का रूप धारण कर लेती है। लेकिन है वही यह हलाग्नि शक्ति शुद्ध रूप में बैकुंठ तक बहती है। बैकुंठ तक जो आनंद है वो शुद्ध होता है। बिरजा पार करने के बाद बैकुंठ के चारों तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है बिरजा, और इस भौतिक संसार के ऊपर एक नदी बहती है जिसका नाम है बैतरणी। बैतरणी और बिरजा के बीच में भगवान शिव का धाम है जिसे महेश धाम कहा जाता है। सिद्ध लोक है जहां पर सनकादि ऋषि लोग निवास करते हैं इत्यादि। तो गोलोक और बैकुंठ धाम में यह हलाग्नि आनंद स्वरूप श्रीमती राधा रानी की शक्ति सविशेष और सक्रिय रूप से प्रवाहित होती है। उसके बाद जब नीचे आती है, समझ में आ रहा है कि सिर तो बज आ रहा है, फिलॉसफी है इसलिए मैं, सिद्ध लोक महेश्वर धाम में जब आती है तो वह निर्विशेष और निष्क्रिय हो जाती है, और जब वह नीचे आती है देवी धाम में प्राकृत जगत में संसार में, वही आनंद जब नीचे आता है तो वह दुख मिश्रित होकर के क्षणभंगुर प्राकृत आनंद के रूप में प्रवाहित होने लगता है। यह प्रवाहित आनंद कायिक आनंद है, यह आनंद जो है यह देह से आनंद है। आत्मा उसका अनुभूति करता है लेकिन देह के द्वारा। तो ये यहां पर उसे आचार्य गण से छाया आनंद कहते हैं। तो इस प्रकार से आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी यहां पर आती है। अब मैं भगवत प्रीति का बात कर रहा था, अब तो सीधा अब आह्लादनी शक्ति के समय संबंध में थोड़ा मैं बतला दिया, अब भगवत प्रीति के संबंध में हम कुछ वार्ता करेंगे। हमारे भक्ति का आनंद का चरम सीमा है वह है निस्वार्थ सेवा। भगवान के चरणों में यदि हम निस्वार्थ सेवा करेंगे तब हम उस प्रीति को प्राप्त कर सकते हैं, और जिसको निस्वार्थ सेवा की भाव उत्पन्न हो जाती है उसमें पांच चीज का प्रधानता होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया गया है। चित द्रवता, चित द्रवित हो जाता है जिसमें निस्वार्थ सेवा की भाव आती है। चित शुद्धि, चित का मतलब होता है मन, चित का अर्थ होता है बुद्धि, चित का अर्थ होता है अहंकार, चित का अर्थ होता है इंद्रिय, और चित का अर्थ होता है दिल। जो निस्वार्थ सेवा करता है उसका मन शुद्ध हो जाता है, जो निस्वार्थ सेवा करता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जो निस्वार्थ सेवा करता है उसका शुद्ध अहंकार हो जाता है, मिथ्या अहंकार से वो परे हो जाता है, वो कहता है मैं कृष्ण का दास हूं। उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, उसका दिल शुद्ध होता है, और वह व्यक्ति संत बन जाता है। तो चित्त की शुद्धि, कथम बिना रोमहर्षे द्रवता चेत सविना बिना आनंद अश्रुषया शुद्धे भक्त्या विनाशया। श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता में इसका वर्णन किया गया, कथम बिना रो महर्षे। किस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया है उसका प्रमाण है कि उसका रूंगटा खड़ा हो जाता है जब भगवान नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। द्रवत चेतसा, उसका चित्त द्रवित हो जाता है, आंखों में अश्रुधारा बहने लगते हैं और उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, यानी असत्व की विकार हो जाता है उसमें जो निस्वार्थ भाव से कृष्ण का सेवा करता है। निस्वार्थ भाव के पांच अंग है, जो निस्वार्थ भाव सेवा करता है उसमें चित्त द्रवता, चित्त शुद्धि, सर्वगुण निधानत्वम, सर्वै गुणै तत्र समाहित असुरा। जो निष्काम भाव से सेवा करता है समस्त देवताओं के गुण में विद्यमान हो जाते हैं, वो गुणी हो जाता है, जिसको भगवान कहते हैं त्रैगुण विषयान वेदा नैस्त्रैगुण भवा अर्जुन, तीन गुण से परे हो जाओ, वो नैस्त्रैगुण हो जाता है जो निष्काम भाव से कृष्ण का सेवा करता है। उसके बाद भगवत प्रीति व्यतीत अन्य तात्पर्य हीनता, अन्य कुछ नहीं चाहिए, उसे एक ही चाहिए कि कृष्ण कैसे प्रसन्न रहें। और पांचवा है अनिवर्चनीय माधुर्य, भागवती प्रीति आह्लादनी की वृत्ति होने के कारण स्वयं अपूर्व स्वादमयी और परम मधुरा है, यह आनंद की पराकाष्ठा है, अशेष पुरुषार्थ संपत्ति इसकी दासी के समान है, दासी कृता से सह पुरुषार्थ संपत्ति। श्रीपाद जीव गोस्वामी प्रति संदर्भ में इस बात का वर्णन किए हैं। अब भगवत प्रीति, राधा रानी का भगवान से बहुत प्रेम है और जो पांच चीजें मैं बताया उसमें से यह है, एक है भगवत प्रीति व्यतीत अन्य तात्पर्य हीनता है, और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र यही चाहिए कि हमारे श्याम सुंदर खुश रहे। राधा रानी में ये पांचों चीज देखने को मिलती है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है विरह निराधे, रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत, इसे मैं एक उपाख्यान प्रस्तुत करूंगा आप लोगों को, जिसमें राधा रानी के प्रीति का वर्णन किया गया है कि कृष्ण से कैसा प्रीति है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, वृंदावन छोड़कर नहीं गए मथुरा, मथुरा गए, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़कर के कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन बाह्य रूप से वे वृंदावन को छोड़कर के चले गए। ब्रज की गोपियां, ब्रज की लताएं पताएं, नन यशोदा, गौएं, पशु पक्षी जितने थे सब लोग खाना पीना त्याग थे और कृष्ण के विरह में व्यथित रहते थे। राधा रानी उन्मादनी हो गई, विरहणी हो गई, वह कृष्ण के विरह में जमुना जी को देख करके कथम कृष्ण आ रहे हैं, श्याम बादलों को देख करके मूर्छित हो जाती थी, ललिता विशाखा चंद्रा जितनी सखियां थी सब लोग बड़े फ्रेम पड़ गए कि राधा रानी का जो ये स्वभाव है वो ठीक नहीं है, ऐसे राधा रानी का खराब हालत हो जाएगा। तो उसमें से सब गोपियों ने मिलकर के चंद्रावली, एक बड़ी चंद्रा नाम की एक सखी थी, बड़ी चतुर सखी थी, उसने राधा रानी को ढाढ़स बधाया और कहा कि मैं मथुरा जाऊंगी और अपने स्वामिनी श्रीमती राधिका के प्रसन्नता के लिए उस कृष्ण को मैं लेकर के आऊंगी। जब यह बात राधा रानी के सामने कहा गया तो राधा रानी ने कहा, चतुरा चंद्रे तू जान शीघ्र मधुपरी ले आने को श्रीहरि। हे चंद्रे तू जल्दी मधुपुरी जाओ और श्याम सुंदर को लेकर के आओ। चंद्रा कहती है, लाने को नौ घन श्याम चली मैं मथुरा धाम, जाकर मथुरा में ढूंढूंगी उसे घर घर में, जहां भी मिलेगा श्याम ले आऊंगी उसे ब्रज धाम, बस जान ले अपने मन में कि आ गया वह और पड़ा तेरे चरणों में। कहते कि मैं जाऊंगी मथुरा, घर घर में श्याम सुंदर को ढूंढूंगी, उसे पकड़ के लाऊंगी और ला करके हे स्वामिनी आपके चरणों में दे दूंगी। राधा रानी कुछ सुनना नहीं चाहते, चंद्रा तू जल्दी जा लेकर के आ। चंद्रा गई, फिर मुड़ करके आई। राधा रानी कही, क्यों तू क्यों आ गई, तू अभी तक गई क्यों नहीं? एक एक पल जुगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में एक एक क्षण एक एक जुग के समान लग रहा था। तो जा गई और तुरंत आ गई। राधा रानी कहे, तो अभी यहीं पर है, अभी तक लाई नहीं। वो समझे कि श्याम सुंदर को लेकर के आई है। तो चंद्रा ने कहा कि सखी एक बात याद आई, मैं वहां जाऊंगी तो श्याम सुंदर को कैसे लाऊंगी, कुछ प्रमाण होना चाहिए। मथुरा वाले कहेंगे तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ये श्याम सुंदर वृंदावन का है, ये तो हमारा है, देवकी वसुदेव का बेटा है, या आकर के और यहां पर देवकी वसुदेव को कारागार से छुड़ाया, कंस को मारा, ये मथुरापति है, तुम कैसे ले आ सकते हो, प्रमाण क्या है? तब वह सखी राधा रानी से बोली, याद है ना तुझे भी बात उस दिन की, जब तूने किया था मान, कितने विनती की थी, चरणों में मुकुट रख दैनुक्ति बार बार की थी, लिखा था अपना नाम तेरे चरण तल पर और लिख दिया था कुमकुम से भोज पत्र पर एक प्रतिज्ञा पत्र इस प्रकार। कि सखी तुम्हें याद है उस दिन की बात जब तू मान की थी। राधा रानी माननी है, कृष्ण मदन है, मदन मोहन है, लेकिन मदन मोहन मोहिनी है। जब मान करती है राधा रानी, कृष्ण को बड़ा परटर्ब करता है, डिस्टर्ब करता है। एक कथा मैं बाद में बताऊंगा मान का, जब मान का भाव आएगा तब। अभी आ रहा है निस्वार्थ सेवा का, उसी पर मैं कथा कर रहा हूं। तो कहा, जब तुमने मान की थी तो कृष्ण ने एक केवाला लिखा था, बोलते हैं ना गांव में, ये क्यों सोरा भी है, ये तो केवाला लिख दिया क्या अभी से? खेत जब किसी को बंधन में दिया जाता है तो केवाला लिखा जाता है कि मैं तुमसे इतना पैसा लिया हूं, दे दूंगा तब मैं, वो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसे, एफिडेविट, एग्रीमेंट ना, कुछ एग्रीमेंट ना, एग्रीमेंट था। तो कहते कि वो एग्रीमेंट और लिख दिया था कुमकुम से भोज पत्र पर एक प्रतिज्ञा पत्र। वो प्रतिज्ञा पत्र क्या था? महामहिम अनंत गुण निधान करुणा निधान श्री राधाजू, मैं श्याम सुंदर साकीन नंद गाम जाति ग्वाला बल्द नंद राजा स्वीकार करता हूं कि मैं आपके प्रेम का चिर ऋणी हूं, ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, अतः आपसे आपका कृत दास हूं, आपकी आज्ञा पालन करने को बिना ना नुकुर किए सदा बाध्य हूं, यह लिख दे रहा हूं शिक्षा से बिना किसी जोर दबाव के, स्वस्थ मस्तिष्क से जिससे समय पर काम आए, इसे प्रतिज्ञा पत्र समझ जाए साक्षी रूपमंजरी हस्ताक्षर श्याम सुंदर, समय मध्यांतर स्थान बिलासकुल अभ्यांतर। फर्स्ट क्लास एग्रीमेंट है, फर्स्ट क्लास का एग्रीमेंट। फिर से पढ़ता हूं, मैं श्याम सुंदर, महा ऊपर का सब्जेक्ट है, महामहिम अनंत गुण निधान, करुणा निधान श्री राधा जी, उनको एड्रेस, डियर श्री राधा जी, मैं श्याम सुंदर, जैसे लिखा जाता है ना, मैं श्याम सुंदर, ग्राम नंदग्राम, जाति ग्वाला, पिता का नाम नंद राजा, स्वीकार करता हूं कि मैं आपके प्रेम का चिरऋणी हूं, ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, अतः आपसे कृतदास हूं, आपकी आज्ञा पालन करने को बिना ना नुकुर किए सदा बाध्य हूं। यह लिखे दे रहा हूं, अंत में लिखते हैं, मैं अपने स्वेच्छा से लिखता हूं, यह लिखे दे रहा हूं स्वेच्छा से, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी जोर दबाव के, विथ गुड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क से, जिसे समय पर काम आ सके। अब उसके नीचे हस्ताक्षर किए भगवान, और विटनेस थे रूपमंजरी, हस्ताक्षर श्याम सुंदर, समय दोपहर का, स्थान विलास कुंज। तब याद कराती है चंद्रा सखी राधा रानी से, है ना वहां प्रतिज्ञा पत्र तेरे पास, ले जाऊंगी उसे मैं अपने साथ, लाओ वो दे दो मुझे, मैं प्रमाण लेकर के जाऊंगी। तो राधा ने कहती है, क्या करेगी उसे ले जाकर, पूछ नहीं तो क्या करोगे उसको लेकर के, उससे क्या होगा। चंद्रा कहती है, पहले तो कहूंगी उससे, समझा कर विनती कर, यदि करेगा अनुसुनी मेरी तो कहूं जोर कर, और ले आऊंगी बांध कर उसे, यदि कहेंगे लोग मुझसे बांधे के राजा को मथुरा के, तो कहूंगी दिखा प्रतिज्ञा पत्र, राजा है तो क्या हुआ मथुरा का, बांध रही जिसके आज्ञा से है कृतदास उस महामहिम सरकार का, उनकी विमल कृति का यत्र तत्र सर्वत्र विस्तार है, उनका प्रेमियों के हृदय क्षेत्र पर एक छत्र अधिकार है। श्रीमती राधा रानी की, तो प्रेमियों के हृदय क्षेत्र पर श्रीमती राधा रानी का एक छत्र अधिकार है। जब इस प्रकार से चंद्रा कही, अब राधा रानी का कह रही है कि मैं जाऊंगी, पहले समझाऊंगी, समझ जाए तो ठीक है, मैं तो अनुनय विनय करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि चलिए श्याम सुंदर, आपके बिना श्रीमती राधा रानी केवल शरीर धारण, केवल आत्मा है शरीर में, वो तो मृतक प्राय हो गई है, समझाऊंगी बुझाऊंगी, शायद उसके दिल में कुछ दयाद्र आ जाए, दया आ जाए कि कैसे नंद जसोदा हैं, कैसे लता पताएं हैं, कैसे गौवे हैं, सब खाना छोड़ दी हैं, आपका स्वरूप आप कैसी हो गई हो, इत्यादि इत्यादि कहूंगी। यदि नहीं सुनेगा, मथुरा में जाकर के कठोर हृदय वाला हो गया होगा, तो मैं जबरदस्ती उसे बंदी बना करके घसीटते हुए लाऊंगी। यदि मथुरा में कोई बोलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगी, हैं? कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज जो हैं, जिनकी विमल कृति का यत्र तत्र सर्वत्र विस्तार है, उनका प्रेमियों के हृदय क्षेत्र पर एक छत्र अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमती राधा रानी का वो ऑर्डर दिखाऊंगा। अब जब राधा रानी सुनी तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया, जब वह यह बात सुनी कि मैं कृष्ण को, श्याम सुंदर को बांध कर लाऊंगी, यह सुनते ही राधा रानी का हृदय विदीर्ण हो गया। अब देखिए एकांतिक प्रीति राधा रानी का कृष्ण के प्रति यहां दिखाया गया है। राधा रानी उस प्रतिज्ञा पत्र को चंद्रा को देती है, कहती सखी चंद्रे, सुन मेरी एक प्रार्थना, न बांधना कर कमल, न करना भर्सना, हाय कैसे कहूं सखी, करते ही यह कल्पना, होती हृदय में दारुण जो वेदना। ये राधा रानी का प्रीति है कृष्ण के प्रति। राधा रानी चाहती है कि कृष्ण आए, लेकिन ऐसे नहीं चाहती हैं जैसे कि इन्होंने कहा कि हाथ पैर बांध करके घसीटते हुए कैदी के समान लेकर के आऊंगी। प्रार्थना करती है, कहते न बांधना कर कमल, उनके हाथ को मत बांधना, न करना भर्सना, गाली गलौज ही मत करना, हाय सखी कैसे कहूं सखी करते ही यह कल्पना होती हृदय में दारुण जो वेदना। चंद्रा कहती है यदि न बांधू कर कमल न करूं भर्सना तो क्या परूं चरण उनके और करूं वंदना। इस चोर के चरण में पड़ करके मैं वंदना करूंगी। चोर को बांधना चाहिए, बांध कर लाना चाहिए। राधा रानी रो रही है कर रही नहीं नहीं चंद्रे छी छी वंदना न करना वंदना न करना भर्सना। ये है भक्त का स्वभाव। राधा रानी से हमें सीखना चाहिए। दो भक्त में से एक भक्त गलत भी किया है तो उसकी भर्सना नहीं करनी चाहिए, उसका निंदा नहीं करना चाहिए, न तो उसका प्रेज करना चाहिए। ये भगवान के साथ राधा रानी कर रही है छी छी वंदना न करना भर्सना न करना भर्सना। चतुराई से वियोगिनी गोपियों का चित्र उस पर आंकना। हे चंद्रा तुम चतुर हो, अपने चतुराई से ब्रज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को बताना। यही कृष्ण ब्रज के गोपांगनाओं के परिस्थिति को सुनकर के जगन्नाथ बन गए, चित्त दवित हो गया। ब्रज में भाग रहे थे उसी बात को राधा रानी कह रही है कि बतलाना कि ब्रजवासियों का अभी क्या स्वरूप है, वे किस भाव में हैं, इस बात को तुम बतलाना। कर इतना से काम बन जाएगा। चित्र उस पर आंकना, जब चित्र बतलाओगी क्या परिस्थिति है तो उनका दिल जरूर दरिद्र होगा। कहते यदि न हो तब कते, फिर आए न आए यह उसी पर छोड़ना। इतना होने के बावजूद भी वो आए या न आए बहन तो जबरदस्ती मत करना। तो बताना तू ही कि क्या उसे कहूं मैं, अब मैं क्या जाकर तुम बताओ, ऐसे ना करूं बात ना करूं भर्सना ना करूं हाथ पर बांध करके ना तो क्या करूं। तो राधा ने बताया ये है निस्वार्थ सेवा। यही मैं बात बतलाने को कह रहा था जो मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। पूछना पहले उससे, कोई भी स्त्री हो कोई भी वैष्णव हो, दूसरा वैष्णव यदि नाराज हो गया हो तो कैसे मनाना चाहिए, ये हम लोग राधा रानी से सीखें। वह होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। पूछना पहले उससे कि वह है तो कुशल से, पहले उसका हाल चाल पूछना, फिर कहना धीरे से कि हैं हम भी सुख से। प्रयाद उसकी आती बहुत है, रहता यही एक हमें दुख है। यदि आ सके तो आ जाए वह, अब आने से होगा सुख आपार हमें। न आया अब भी तो आएगा फिर कब, न आने से होगा दुख अपार हमें, पर आने से हो क्षति तनिक भी तो आए न लौट कर यहां कभी भी। भेजता रहे समाचार अपनी कुशलता का, रहेगा सुख से तो पाएंगी सुख हम भी। ये है निस्वार्थ प्रेम, ये है निस्वार्थ प्रेम। राधा रानी क्या कहती है, कहती है बोले पहले पूछो उससे कि उसका हालचाल कैसा है, फिर हम लोगों के हालचाल को धीरे से बताना और कहना कि हम लोग भी ठीक हैं। लेकिन उसकी याद बहुत आती है और वो याद हमें बहुत दुख देता है। यदि हो सके यदि वे आ सके तो आ जाएगा तो हम सब लोगों को बहुत अपार खुशी होगी आनंद होगी। और यदि अभी नहीं आ सकता है तो ये पूछ लेना कि कब आएगा, और यदि कभी नहीं आएगा तो हम लोगों को अपार दुख होगी, लेकिन हम जानते हैं कि उसके आने से क्षति होगी इसलिए शायद वो नहीं आएगा। ठीक है नहीं आए तो कम से कम हाल चाल अपना भेजता रहे और इसी से हम लोग सुखी रहेंगे। यह है निस्वार्थ प्रेम। इसीलिए विप्रलंब भाव, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो विप्रलंब भाव है। गौड़ीय वैष्णव का जो भाव है वो विप्रलंब भाव है। हम लोग कृष्ण को देखना नहीं चाहते हैं, हम कृष्ण से मिलना नहीं चाहते हैं, हम केवल यही भाव रखना चाहते हैं कि कृष्ण से मुलाकात होगी, कृष्ण से मुलाकात होगी। जैसे ब्रज के षड गोस्वामी गण, उन लोगों का यही भाव था, हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुना कुता श्री गोवर्धन पाद पतले, कालिंदी बन्ने कुता। यह है विप्रलंब भाव। सर गोस्वामियों को हम रूपानुग वैष्णव हैं, हम लोगों में यह भाव होना चाहिए, विप्रलंब भाव, जैसे श्रीमती राधिका में विप्रलंब भाव। इतना कह करके वह गोपी चली गई। अब आगे का जो बात है वही बड़ा सुंदर बात है। कैसे कैसे यह बात थोड़ा अच्छा है, इसमें पढ़ लेता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब बहाना ढूंढ ढूंढ कर कैसे मथुरा पहुंची हो गोपी चंद्रा, और कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो यह सोची कि उनका अटेंशन अपने तरफ कैसे लूं, तो उतने उच्च स्वर से गाने लगा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। हे राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, हे राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, आज भर गा सकते हो, कल से नहीं, आज भर छूट है, प्रभुपाद जी छूट दे दी, आज आज राधा रानी कृपा प्राप्त करना, कल से नहीं, कल बिना गए राधा रानी कृपा देगी, हैं? बार बार राधा रानी का नाम लोगे कृष्ण नाराज हो जाएंगे, तो केवल आज भर गा सकते हो। जब इस प्रकार से राधा रानी का नाम वह गोपी ली, तो कृष्ण चमक करके तुरंत सिंहासन से उठ गए, देखने लगे कि ये नाम कहां से आ रहा है, आहा कहां से फूटा यह मधुर स्वर, जैसे आकाश से अमृत निर्झर, सुन सुधामुखी का सुधामय नाम, जैसे हुई शीतल मरुस्थल में मेरे प्राण, हाय असीम रसयुक्त राधा नाम के दो वर्ण, पर पी सकते कितना रस मेरे केवल दो करण। अब यह सखी समझ गए कि अम्बल सुदन समझ गए हैं, अब देख रहे हैं, हैं? कानपुर में एक गाय का बच्चा है, बच्ची है, उसका नाम उन्होंने देवकी रखा है, वो बेचारी अंधी है, उसको देवकी देवकी बोलो तो कान फड़काती है चारों तरफ, किधर से आवाज आ रहा है, तो नेपथ्य से पीछे से ये गोपी जय जय राधे जय जय राधे गाते हुए आ रही थी, तो श्याम सुंदर सुन रहे हैं, और लोग नहीं समझ रहे क्या बात हो रहा है, लेकिन राम कहां से, तो वो समझ गई। अब जब निकट आकर के और फिर गा रही थी, तो कृष्ण बोले, जोगिनी क्या नाम है, कहां रहती हो, किस कारण यहां आई हो। बात मत कीजिए पीछे सुरांगी, जोगिनी तुम कहां से आई हो, कहां रहती हो, किस कारण से यहां आई हो। तो ये भी बड़ा चतुर सखी थी, ये क्या कह रही है, महाराज काश दे सकती यथोचित अपना परिचय, याद कुछ भी नहीं आता इस समय, हाय हाय मैं अपना परिचय दे सकती थी, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, न जाने कौन हूं मैं, क्या है नाम, कहां से आई हूं, क्या है काम, आते ही यहां सब कुछ भूल गई हूं, जान केवल रह रही हूं कि यहां खड़ी हूं। ये बड़ा ये टोन मार रही है गोपी, क्योंकि कृष्ण को कुछ बताना चाहती है, वो आगे पता चलेगा। गोपी मैं भूल गई हूं आकर, पता नहीं कहां से हूं, क्या नाम है, क्यों आई हूं, क्या काम है, मैं अपने को भूल गई, इतना ही जानती हूं कि मैं यहां खड़ी हूं। आएगा कुछ देर में याद यदि कुछ, तो कहूंगी आपसे खोलकर सब कुछ, पर मैं जोगिनी कंगालनी, आप महाराज आएगा आपके परिचय मेरा किस काज। कहती है कि अभी तो याद नहीं है, लेकिन आएगा तो मैं खोल करके आपसे बताऊंगी, लेकिन क्या कहूं, मैं जोगिनी हूं, मैं कंगालनी हूं। अरे आप तो महाराजा हैं, मथुरा नरेश हैं, अरे आपको मेरा परिचय प्राप्त करने से क्या फायदा, इससे आपको क्या फायदा होगा। तो कृष्ण कहे कि बड़ा आश्चर्य की बात है, कोई अपना नाम थोड़े भूलता है, अपना पता थोड़े भूलता है, ये कैसे हो गया, यहां आ सब भूल गई हो, यह तुम क्या कह रही हो, क्या यह संभव है कभी एक स्थान से दूसरे को जाए, नाम ग्राम सब भूल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब खोल रही है, कहती है संभव तो नहीं महाराज, पर मथुरापुरी की है कुछ ऐसी ही बात, यहां आकर भूल जाते हैं पहले की बात। सुंदर मार दिया ना, छक्का मार दिया एक बार में कि महाराज मैं ही नहीं सब लोग यहां भूल जाते हैं, यानी आप भी भूल गए हो, यही कहने का उसका मतलब था। पर मथुरा की है कुछ ऐसी ही बात, यहां आकर भूल जाती पहले की बात। कृष्ण, अच्छा जोगिनी जाने भी दो यह बात, पूछूं एक और बात। पति, पूछिए महाराज। तू तो रटती राधा का नाम, बता पाया कहां यह रसमय नाम। तुम जो राधा का नाम रटती हो, ये बतलाओ तो सखी, यह नाम तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। चंद्रा, सुनिए महाराज, राधा नाम है मंत्र राज, गुरु ने दिया यह मंत्र, पाकर इसी हुई स्वतंत्र, जी चाहे सो करती रहती, पर मंत्र सदा जपती रहती, जहां तहां फिरती रहती, इसमें इसे छक्की रहती। कृष्ण, जोगिनी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा करने को उत्सुक हूं, जी चाहे सो मांग लो, बताओ तुम्हें क्या दे दूं। राधा रानी का कोई नाम लेता है तो कृष्ण बड़े खुश होते हैं, लेकिन चंद्रा के समान होना चाहिए, अल्लू गल्लू नहीं होना चाहिए, नहीं तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। चंद्रा, क्या देंगे महाराज और कितना देंगे। कृष्ण कहते हैं रजत कांचन मणि मुक्ता, जितना चाहो उतना। चंद्रा, न रजत न कांचन न और कुछ धन, यदि प्रसन्न है आप तो करूं कुछ निवेदन। कहो जो भी कहना है, संकोच क्या करना है। चंद्रा, एक है हमारी जुथेश्वरी, किया उसने बहुत जनत और किया क्रय एक बहुमूल्य रतन, देकर जो भी था उसके पास, अपना तन अपना मन अपना धन, बड़े चाव से धारण करती वह अपने वक्षस्थल पर, उसे दूर न होने देती एक पल भी, कभी अपने नेत्रों से क्रूर एक कंस चर जाकर, अक्रूर क्रूर मतलब अक्रूर, क्रूर एक कंस चर जाकर ले आया उसे लूटकर, रत्न बिना वह हुई उन्मादनी, जैसे हो जाता नाग खोकर अपनी मणि। सुना है हमने बहुत बार, लूट जाती रमणी जो इस प्रकार, उसके लिए रहना खुला उसके लिए रहता खुला यह दरबार, क्या आप करेंगे विचार और दिला देंगे उस दुखियों को उसकी मणि उसके गले की हार। समझ गए कहने का मतलब ना, क्या कहना चाहती है। नहीं समझे, करे कि हमारे युथेश्वरी हमारी सखियों में प्रधान जो सखी है, उसने बहुत जप होम पूजा खूब किया और जितना घर में संपत्ति था सब बेच करके एक बहुमूल्य रत्न खरीदा, उस बहुमूल्य रत्न के अपना तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया और उसको अपने वक्षस्थल पर सदैव धारण करती थी। वो एक पल भी अपने आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। लेकिन हाय हाय, एक दिन कंस का एक अनुचर जो क्रूर था यानी अक्रूर, वह आया और वह निर्दयी उसको लूट लिया और उसके ध्यान को लेकर के आ गया। हे महाराज, मैंने सुना है कि आपका दरबार सबके लिए खुला है, इस पर कोई विपत्ति होती है तो आपके दरबार में फैसला मिलता है, क्या यहां फैसला मिलेगा और मेरे सखी के मणि का जो उसके गले का हार है वो मिल जाएगा? तो कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं, यदि है प्रमाण उपयुक्त तो जाएगा पकड़ा अभियुक्त। इसके लिए प्रमाण होना चाहिए, यदि प्रमाण तुम्हारे पास है चोर जरूर पकड़ा जाएगा। चंद्रा कहती है प्रमाण अनेक है, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष है, पर प्रमाण यदि हो यथेष्ट तो निश्चय है न जदु श्रेष्ठ कि परिणाम भी होगा श्रेष्ठ, पालेगी न रानी अपना मणि। कहते कि पक्का प्रमाण होगा तो महाराज यदु श्रेष्ठ रमणी अपना मणि प्राप्त कर लेगी ना। कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं। चंद्रा कहते तो सुनिए महाराज, जिसने लूटा सर्वस्व उस रमणी का वह है नामी चोर एक जन्म का। पहले करता चोरी छोटी छोटी माखन और मिश्री की, फिर करने लगा चोरी मणि मणिकियों की। वह तो रमणी भोली भाली उसे बहला फुसलाकर मीठी मीठी बातें कर उससे गुप्त धन का कर्ज लिया। ऋण न चुका सकने पर अपने आप को बंधक रख एक कागज लिख दिया और हस्ताक्षर कर दिया, फिर विश्वासघात कर आया यहां भागकर। वह है अभी यहीं और कहीं दूर नहीं इसी स्थान पर, कागज है मेरे पास, साक्षी सब जीवित हैं मरे नहीं। अब बताएं सो करूं उपाय जिससे धनी अपना धन पाए। कृष्ण कहते हैं सुलोचने, उसका सब कुछ बेचकर ऋण परिशोधन कर ले। चंद्रा, पर उसका सब कुछ बेचकर भी ऋण परिशोधन न हो तब? तो कहती है कृष्ण, तब मैं आज्ञा देता हूं कि बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ। तो चंद्रा कहती है जो आज्ञा महाराज, पर वह हो यदि राज परिवार का कोई, यदि कोई राज परिवार का हो तब क्या होगा? तो कृष्ण कहते हैं अबोधिनी, राजाज्ञा बलवती है, राज परिवार का क्या, स्वयं राजा भी हो तो है बांधना उसे राजा की आज्ञा जो है, राजा से राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। तो राजा कहता है कि चोर यदि राजा भी है तो उसको भी बांधो। चंद्रा, जय हो महाराज जी, महाराज के सुविचार की व्यवस्था करती हूं महाराज, कागज और अभियुक्त दोनों को अभी प्रस्तुत करने की आप व्यवस्था करें, अभियुक्त को बांधकर मेरे साथ पहुंचा देने की। परंतु महाराज एक बात पूछूं? कृष्ण, पूछो। चंद्रा, राधा नाम सुनकर क्यों आए अश्रु आपके अपने आप, कौन है राधा कहां रहती है वह बताएंगे क्या आप? यानी कि आप तो उसको जानते हैं, जब नहीं जानते तो उसका नाम सुनते ही आपके आंखों में आंसू क्यों आ गया? तो आप जानते जरूर हैं। कृष्ण, सुन जोगिनी, एक है वन वृंदावन जिससे है त्रिलोकी धन, वृंदावन में गोपी अनेक उनमें है राधा गोपी एक, उसी ने हरा मेरा मन वही है मेरा जीवन, मेरे जीवन का जीवन केवल उसके ही कारण, रहते प्राण मेरे मन तन उसके संबंध से ही, और गोपियां जितनी मेरी सखी सहाय दासी स्वामिनी। चंद्रा, अनुपम है आपकी प्रीति, पर जब कहने की यह रीति तो करने के भी प्रीति, जब कहने कथनी और करने में अंतर हो रहा है। कृष्ण, स्वतः कहीं यहां कोई ग्रज ब्रज गोपी तो नहीं है, बातें तो कुछ ऐसी ही अटपटी कर रही है। मुखरे सामने आकर, तुम बात बात में व्यंग कर रही हो, कुछ पहचानी सी लग रही हो पर पहचान में आ न रही हो। चंद्रा, ठीक ही तो है महाराज, जब सूर्य संध्या से आलंगित होता है तो पहचान उषा को कब पाता है। कितना सुंदर बात है, उषा काल यानी सुबह और संध्या, संध्या उषा को नहीं पहचानता है। संध्या काली हो या कुबरी, उषा से तो अच्छी है, पहचान का भी तो समय होता है महाराज, कभी आता है कभी जाता है, काल की गति कुटिल है। काल और काले में अंतर ही क्या है, काल और काले में अंतर ही क्या है, यदि कुछ है तो यही कि काले का लौ बड़ा है। काल और काले, कृष्ण काले हैं और समय जो है उषा से अस्त की तरफ चला गया, काल हो गया है, तो कहते हैं कि काले का लौ बड़ा है, काले डबल हो गया है। काला इसलिए अधिक जटिल है, उषा जितनी सरल है काला उतना कुटिल है, पहचान का समय अब आ रहा है, देखिए यह प्रतिज्ञा पत्र आपका है। अब प्रतिज्ञा पत्र दिखा रही है, तो तू चतुरा चंद्रा हो, वृंदावन से आई हो, तभी ऐसी बातें कर रही हो। बोलो बोलो चंद्रे, कैसा है हमारा वृंदावन, सुखी तो है सब जन, कैसे हैं बाबा नंद, कैसी मां जसुमती, मूर्ति वात्सल्य स्नेह की, कैसे हैं सब सखागण, जिनके साथ करता गोचारण, कैसी ही कैसे है प्रिय गोपियां, मधुर रस की मूर्तियां, और कैसी श्री राधिका सर्वाधिका प्राणाधिका। चंद्रा, सुने कपटी महाराज, रहने भी दिया कपट प्रेम, करेंगे या क्या पूछ कर कुशल छेम, ब्रज के जन हैं सुख से या दुख से, करना क्या है अब तुम्हें उनसे, तुम्हारी तो कट रही सुख से आज, पाकर मुक्त मथुरा का राज। पूछते बात ब्रज बालाओं की, न आती लाज तुम्हें नेक भी, भेद पैने सर से हिरणी को, पूछता क्या व्याध कभी भी, बात उसके कुशल छेम की, बात उन सरला ललनाओं की, ठगी गई दुनिया बालाओं की, है क्या कुछ कहने सुनने की, कहूं भी मैं तो क्या सामर्थ तुम्हें समझने की। खूब भर्सना कर रही है। एनीवे, इस प्रकार से भर्सना करने के बाद कहते चंद्रे, वंचना करो ना, कहो न बात ब्रज की, ब्रज के सब जन की, और विलंब करो ना। अब यह जो बात है वास्तव में बहुत हृदय विदारक बात है। चंद्रा, तो सुनिए महाराज, जो है वृंदावन की दशा आज, जो था कभी सुंदर सुरम्य सुखधाम, अब हो रहा दारुण दुखधाम, जाने कहा जहां से नाम न लेता बसंत, वहां अब पतझड़ का न होता कभी अंत, दिन मणि दिन भर प्रलयंग आग उगलते है, वायु सर्प सा सुसु करता चलता है, कालिंदी में जल नहीं अश्रुधारा बहती है, लहर लहर उसकी पुलिन पर सर पटकती है, अब नहीं वहां नववधु भी सुमन श्रृंगार करती है, मल्लिका सदा सुमन अश्रु टप 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 टपकाया करती है, अब नहीं कोकिल की काकिली वहां, नहीं पपीहा की पीपी कहां, बात काके संदेश की नित्य देखी जाती है, गोष्ट में गईये निकर बिन सुने बंसी का रव, रह रह कर रंभाती रहती है, जाती नहीं बन को वे अश्रु बहाती रहती है, नाचते नहीं मोरों के झुंड, भार पंखों का ढोते रहते हैं, ग्वाल बाल पिछ देख हिचकियां भर भर रोते हैं, नंद हुए अंधसम जसुमती फुट फुट कर रोती है, हाय कहां मेरा नीलमणि, कहां भू पर लुंकित होती है, गोपियों की क्या कहूं, कैसे जीवित रहती हैं, राधा मुख देख देख अश्रु बहाती रहती है। इतना कहकर वह स्वयं रोने लगी। कृष्ण रोमत चंद्रे, कह न राधा की बात, कहते कहते उसकी बात क्यों रुक क्यों गई हठात। चंद्रा, क्या कहूं महाराज, तुम क्या समझ सकोगे उसकी बात, चाहते दी तुम व्यथा उसकी जानना, और जानना उसकी प्रेम का यथार्थ मर्म, तो सुनो जो करनी होगी साधना, और साधना के आवश्यक सब धर्म। एनीवे, मैं इसको रूप गोस्वामी के द्वारा बंगाली में लिखा हुआ है बिरहणी राधे, और इसको श्रवण चक्र ने अनुवाद किया इसमें। तो इस प्रकार से राधा रानी के मैं केवल वर्णन कर रहा था, मैं अभी सिद्धांत का ही बात चल रहा था, तो मैं राधा रानी के भाव का प्रीति का वर्णन कर रहा था। उसमें भगवत प्रीति व्यतीत अन्य तात्पर्यहीनता, और कोई भावना नहीं, एकमात्र भावना कि श्याम सुंदर कैसे खुश रहे, इसी का मैं वर्णन कर रहा था। भगवत प्रीति के विभिन्न स्तर होते हैं, जिसमें से हैं रति, शांति, मान शून्यता, आशावन, समुत्कंठा, नामगान में रुचि, भगवत गुणाख्यान में आसक्ति, भगवत बस्ती स्थल में प्रीति। तो ये सब जो है ये भगवत प्रीति के स्तर रति, ये रति में ये साथ जाए। दूसरा है प्रेम, उसके बाद तीसरा है स्नेह। स्नेह दो प्रकार का होता है, एक होता है धृतमयी और एक होता है मधुमयी। धृतमयी स्नेह में तदीयता की भाव ज्यादा होती है, और मधुमयी में मदीयता की। तदीयता और मदीयता का मतलब कृष्ण मेरे हैं, यह तदीयता हुआ, और मैं कृष्ण की हूं या कृष्ण का हूं, यह मदीयता हुआ। तो चंद्रावली में धृतमयी स्नेह था और राधा रानी में मधुमयी स्नेह था। चंद्रावली हमेशा सुनते कहती थी कि कृष्ण मेरे हैं, और राधा रानी हमेशा कहती थी कि मैं कृष्ण के हूं। इसी भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, इसलिए उन्होंने कहा अई नंद तनुजम किम करम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृशम स्त विचिंतन नहीं आशिष्य वा पादरताम विनश माम अदर्शनम मरमाताम करो तु वा यथा तथा वा विद्धा तुलम बटो मत प्राण नास्तु स एव नापर। हे कृष्ण, मैं आपकी हूं, चाहे इधर यू इंब्रेस मी और मेक मी ब्रोकन हार्टेड, आई एम योर्स। ये है मदीयता का भाव, यानी मधुमयी। कौन हारमोनियम बजा रहा है पीछे? तो यह भाव श्रीमती राधिका में है। स्नेह के बाद आता है मान। श्री माता राधा रानी माननी है, उनके समान कोई मान नहीं कर सकता है। मैं बीच बीच में कथाओं को भी, समय है बोलो पास ना है, चिंता नहीं है, किसी को भोजन पानी का तो कोई तकलीफ नहीं है, अभी प्रसाद तो बाद में है। राधा रानी के मान का वर्णन कुछ मैं सोच रहा था करूं। भूल गया। एनीवे, राधा रानी में बहुत मान है, मान की कमी नहीं है। उज्ज्वल नील मणि में एक कथा है कि एक समय राधा रानी कृष्ण को देखी और कृष्ण के सौंदर्य को देख करके, स्नेह तो है ही, उनके आंखों में अश्रु धारा बहने लगे। जब कृष्ण देखे कि श्रीमती राधिका के आंखों में अश्रु धारा बह रहे हैं तो पूछे राधा रानी से, क्या हुआ श्री जी राम? श्रीमती राधिका, क्या हुआ हे प्रियतम, क्या हुआ आपके आंखों से अश्रु धारा क्यों बह रहे हैं? राधा रानी बतलाना चाहती थी, कहीं नहीं मैं सही आ रही थी और जोर से आंधी आया और कुछ धूल कण चला गया आंख में, इसलिए, क्योंकि वो कृष्ण का प्रेम चाहती थी। तो कृष्ण कहा कि ठीक है आइए, मैं फूंक मार करके और आपकी आंख को ठीक कर देता हूं। तो कृष्ण आए फूंक मारने के लिए, और कृष्ण फूंक मारने के बजाय राधा रानी को देख रहे हैं, केवल वो फूंक मारना दूर रहा। तो राधा रानी को मान हो गया, कहा कि बदमाश, कहा कि आंख में फूंक मांगने आया, ये कोई गड़बड़ कर रहा है, हैं? तो धक्का दे दी कृष्ण को। इस प्रकार से ऐसे ऐसे मान के बहुत से प्रमाण है उज्ज्वल नीलमणि में। उसके बाद प्रणय, उसके बाद आता है राग, अनुराग। अनुराग के भी कई एक विभाग हैं, परस्पर वशीभूत, प्रेम वैचित्य, प्राणहीन वस्तु के रूप में जन्म लेने की लालसा, विप्रलंभ, विस्फूर्ति, महाभाव। ये राधा रानी का स्वरूप है महाभाव, है? मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी, अन्यो नय बाढ़े न के हां मुख नाही मुड़ी। तो मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी, मन मान और माधुर्य ये दो है, दोनों में होड़ लगा रहता है महाभाव में कि कौन महान है। उसके बाद आता है रूढ़ महाभाव, फिर आरूढ़ महाभाव, फिर मोदन, फिर मोहन। कृष्ण मोहन है लेकिन राधा रानी मोहन मोहिनी है। इस प्रकार से भक्त मादन, मादन के बाद, हां मादन तक आता है, ये नौ जो है भगवत प्रीति के लक्षण, और ये राधा रानी में ये सब लक्षण विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से राधा तत्व के संबंध में हम लोग कुछ वार्ता किए। राधा रानी के जन्म के संबंध में मैं कहा था और कुछ कथाओं के संबंध में। तो बहुत से शास्त्रों में अलग अलग तरीके से राधा रानी के जन्म का वर्णन किया गया है। मोटा मोटी ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि और आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू, इन ग्रंथों में एक तरह से ही प्राय लीला का वर्णन किया गया राधा जन्म का, लेकिन ब्रह्मवैवत पुराण में, गर्ग संहिता में, उन शास्त्रों में अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। चलिए मैं आनंद वृंदावन चंपू से कुछ बातें करूंगा। एक समय की बात है, श्रीमती राधिका और कृष्ण, कृष्ण निकुंज में स्थित थे। मैं प्राय बता चुका हूं कि कृष्ण जिसमें निवास करते हैं उसे कुंज कहते हैं और राधा रानी जिसमें निवास करती हैं उसे निकुंज कहते हैं। तो निकुंज विलासनी है श्रीमती राधिका, वहां पर कृष्ण थे राधा रानी के साथ में। राधा रानी कृष्ण का सेवा कर रही थी और कृष्ण का सेवा करते 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 उन्हें इतना आनंद आया कि वो मूर्छित सी हो गई। कृष्ण को भी बहुत मान है, राधा रानी को भी बहुत मान है। कृष्ण को तकलीफ होता है जब राधा रानी मान करती है, और राधा रानी को तकलीफ होता है जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। एक समय राधा रानी से कृष्ण बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके बोले कि हे स्वामिनी, जब आप मान करती हैं और मेरे दिल में क्या बीतता है, यदि आप इसको समझ जाएंगी तो आप कभी माने नहीं करेंगे, कितना मैं दुखी होता हूं। तो राधा रानी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप बांसुरी बजाते हैं तो मेरे दिल में क्या बीतता है, यदि आप ऐसा समझ जाएंगे तो बांसुरी बजाएंगे इन्हें। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ राधा रानी और कृष्ण में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि राधा रानी सिखाएंगी कृष्ण को कैसे मान करना और कृष्ण सिखाएंगे राधा रानी कैसे बांसुरी बजाना। तो बांसुरी बजाना तो सीख ली राधा रानी, और कृष्ण भी मान करना सीख लिए। स्त्रियां मान करती हैं लेकिन पुरुष लोग आसानी से मना लेते हैं। पुरुष लोग ही मान माननी के मान तोड़ने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन पुरुष लोग जब मान कर ले तो स्त्रियों को मालूम नहीं है। तो राधा रानी तो कृष्ण को सिखा दी, लेकिन ये नहीं सीखी कि मान तोड़ना कैसे चाहिए। वो तो सीखना चाहते बांसुरी कैसे बजाना चाहिए। तो कृष्ण किए एक दिन मान, वो बतला दिए थे कृष्ण, नहीं राधा ने बताई थी कि मान करने पर सेवा करते रहना, आंख से आंख मिला करके मत देखना, मुड़ी सिर नीचे रखना, अंगूठा के नाखून से मिट्टी को खुजलाते रहना है, कुछ बात मत करना, ऐसे स्त्रियां मान करती है। सब मान का पूरा पाठ राधा रानी पढ़ा दी थी। कृष्ण आए एक दिन, बिल्कुल खड़े थे, देख नहीं राधा रानी तरफ, और अंगूठा से खुजला रहे हैं जमीन को, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो राधा रानी सोचे कि कृष्ण मान कर लिए हैं। अब एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, कृष्ण बातें नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के बिना के विरह में राधा रानी एक सेकंड नहीं रह सकती है। तो कृष्ण मान करना सीख लिए थे, राधा रानी मान तोड़वाना नहीं सीखी थी। तो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे, सोचे कि मान के तोड़ देंगे है? लेकिन वो भूल गई थी, उसके लिए अनुनय विनय करना पड़ता है। जब कोई काम नहीं आया तो स्त्रियों का अंतिम अस्त्र क्या है, रोना। तो लगी रोने राधा रानी, तो भगवान कहे कि ठीक है, आपने हमको मान करना सिखा दिया लेकिन मान कैसे तोड़ना अब हमसे सीखे नहीं थी, अब मैं सिखाता हूं। एनीवे, तो कृष्ण का सेवा वहां पर जब टूट गया मान कृष्ण का, तो उस दिन सेवा राधा रानी कर रही थी, और दो तीन दिन के बाद सेवा का मिला था मौका, खूब सेवा कर रही थी और बड़े प्रेम से विह्वल हो गई। तो राधा कृष्ण देखे, अरे ये तो हमको पूछते भी नहीं है, उनको वैसे ही मूर्छित देकर कृष्ण वहां से चल दिए। कृष्ण की एक दूसरी बड़ी प्रेसियां बहुत हैं, उसमें से एक हैं जिनका नाम है बिरजा, जो 16 साल की कुंवारी हैं। तो बिरजा के पास वो चले गए। इधर जब राधा रानी का होश आया तो देखे कृष्ण यहां पर है ही नहीं, तो राधा रानी विक्षिप्त हो गई कृष्ण के लिए, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जा रही थी, सबसे पूछ रही थी कहां गए कृष्ण, कहां गए, कहां गए, कहां गए। तो किसी ने कहा कि वो बिरजा के भवन में है। तो राधा रानी को बहुत गुस्सा आया, गए, गई राधा रानी वहां पर। कृष्ण अपने एक सखा श्रीदाम को, श्रीदामा को वहां पर पहरेदार बनाए थे कि अंदर बताने देना, श्रीदाम को पहरेदार बनाए थे, अंदर बताने देना, कोई भी हो, कोई भी हो अंदर बताने देना। तो पूछा नहीं कि यदि स्वामिनी जी आई तब, वो पूछा नहीं। राधा रानी आई, श्रीदाम मना कर दिया, कहा कि नहीं, ब्रजराज का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकती हो, वो अभी कुछ जरूरी काम में बिजी हैं। राधा रानी कह रहे, तू हमको रुक रहा है, मैं ब्रज की स्वामिनी, तू मुझे रुक रहा है, मेरे रोटी पर तू पलता है, मुझे रुक रहा है। राधा रानी को गुस्सा आया, उल्टा सुल्ला से बल्ला शुरू कर दी, कही कि भले आप स्वामिनी है लेकिन स्वामी का आदेश है, क्या करूं मैं, आप नहीं जा सकती। राधा ने कहा, तुम असुर के समान व्यवहार कर रहा है और असुर लोग गोलोक में निवास नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, जाओ और तू राक्षस बन जाओ भूमंडल में। अब गुस्सा में दोनों तरफ पारा गर्म हो गया था। जैसे कि श्रीमद राधिका, आपको बहुत अहंकार आ गया है ब्रजेश्वरी होने के नाते, स्वामिनी होने के नाते। जिस प्रकार से कृष्ण के बिना आप नहीं रह सकती हैं, वैसे ही कृष्ण के बिना मैं भी नहीं रह सकता हूं। उनका मैं सेवक हूं, मैं उनका सेवा कर रहा हूं और आपने हमारे सेवा में बाधा डाला, मुझे श्राप दे दिया, मुझे सेवा से अलग कर दिया, इसलिए मैं भी आपको श्राप दे रहा हूं कि आप भी भूमंडल में जाओगी और कृष्ण के विरह में जीवन यापन करोगी। जब श्राप के ऊपर श्राप हो गया, झगड़ा हो रहा था, तो भगवान सुने और बिरजा के साथ में बाहर है, झगड़ा क्या बाहर हो रहा है। तो बिरजा को मालूम नहीं था कि श्रीमती जी आ गई है। जब देखी राधा रानी को तो पसीना छूने लगा। वो बिरजा पहले गोपी के रूप में थी, लेकिन वो तरल द्रव्य के रूप में, पसीना मतलब पानी होकर के और पूरे गोलोक के चारों तरफ नदी के रूप में बहने लगी, और वह है बिरजा नदी। तब पूरा वृतांत कृष्ण सुने, कहे अब क्या करें, आप दोनों एलिवेटेड सोल हैं, दोनों ने श्राप के ऊपर श्राप दे दिया है, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, अब तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के बिना मैं रह भी नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे भी आना पड़ेगा। तो ब्लूप्रिंट हो गया, प्लानिंग हो गया, कैसे सब लोग यहां पर आएंगे। उधर जब मामा कंस, आठवीं संतान जो जोग माया थी, उसको मारने के लिए लिए, तो जोग माया को मार तो नहीं पाए, वह अपना रूप धारण कर ली, जोग माया का रूप धारण कर ली, और उसने कहा कि दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, पूर्व जन्म में तुम काल नेमी था और जिस विष्णु ने तुम्हें मारा था, जिसको तू अपना शत्रु समझता है, वह शत्रु तुम्हें मारने के लिए पुनः अन्यत्र पैदा हो चुका है। आकाशवाणी के बाद पर शंका उतना नहीं था, उस शंका था, लेकिन वो दुर्गा का पुजारी था, शक्त था, कंस शक्ति का पुजारी था, तो दुर्गा के बात पर विश्वास हो गया, तुरंत प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, बताइए मेरा रक्षा कैसे हो सकता है, मैं कैसे बच सकता हूं। तो बिंदवासिनी दुर्गा देवी ने कहा कि आज के तीसरे दिन आठ विभूतियां जन्म लेगी, आज सुंदरियां जन्म लोगी, उसमें से जो राधिका है उसका हाथ का जो खाएगा, उसके हाथ का बना हुआ खाएगा, या जिससे उसका विवाह होगा वह राजेंद्र कहलाएगा और वह महादेव विजयी होगा। जो उस लड़की से विवाह करेगा, उसके हाथ का बना हुआ खाएगा, वह महादेव विजयी होगा और राजेंद्र कहलाएगा। तो कंस मूर्ख समझ गया कि बस मैं वही कर लूंगा, मैं राजेंद्र बन जाऊंगा और मैं महादेव विजयी बन जाऊंगा उसे शादी कर करके। इधर विंध्याचल पर्वत को बहुत अहंकार है, विंध्याचल पर्वत को इतना अहंकार है, एक बार सुमेरु से उन्हें अहंकार हो गया, सुमेरु पर्वतों में सबसे ऊंचे, तो विंध्याचल लगे उठने, खड़ा होने, खड़ा हो गए, सुमेरु को भी ढकने लगे, पूरे आकाश को ढक लिया, हवा नहीं बह रहा था, सब लोग देवता लोग त्राहिमाम करने लगे, हवा ऑक्सीजन आ ही नहीं रहता, सब प्राणी बड़े दुखी थे, सब देवता भागते भागते दुर्वा गए अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि विंध्याचल के गुरु हैं, अगस्त मुनि काशी में निवास करते थे, योगीराज गोवर्धन को लाए, वही अगस्त मुनि जब वहां विंध्याचल आए तो विंध्याचल जो है गुरु जी आ गए तो गुरु जी को सत्सांग प्रणाम करना चाहिए, तो सत्सांग प्रणाम किया और गुरु जी कहे ए मस्त बेटा अभी मैं साउथ इंडिया टूर करने जा रहा हूं, बाद में आता हूं। गुरु जी खड़ा होने के लिए नहीं बोले, विंध्याचल आज तक पड़ा हुआ है, सत्सांग दंडवत कर रहा है, ऊपर उठा ही नहीं। और अगस्त मुनि आज तक काशी नहीं आए, इसलिए उत्तर काशी निवास करते हैं, कांची, कांची में निवास करते हैं, पुलस्ती काशी में और अगस्ती उधर, वो अलग कथा है, उसको छोड़िए। तो विंध्याचल में बड़ी स्पर्धा हमेशा थी, हमेशा कंपटीशन। जब पार्वती पर्वतराज हिमालय को प्राप्त हुई और भगवान शिव से विवाह हुआ तो विंध्याचल को बड़ा ये हुआ, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा पुत्री प्राप्त करूंगा जिस पुत्री का पति महादेव विजयी हो और राजेंद्र हो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति तपस्या किया, खूब घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए एवं मस्तु तो कह दिए, बाद में बड़े फेरेम पड़ गए, कहे प्रभु अब क्या हो गया। क्षीर सागर पर गए, ब्रह्मा जी तपस्या बड़े किए, क्या तो मैं एवं मस्तु कह दिया हूं, अब क्या होगा, कौन महादेव विजयी आएगा और वो पुत्रियां कौन होगी। तब भगवान आकर के अपना सब ब्लूप्रिंट दिखा दिए ब्रह्मा जी को कि आप चिंता मत करो, आप ठीक काम किए हो, आप ठीक काम किए हो। उस समय ब्रह्मानु बाबा और उनके एक भाई थे जो भीष्मक देश के राजा थे, क्या नाम मैं भूल रहा हूं, चंद्रावली के पिता चंद्रभानु बाबा। ये सूर्य के, कहा जाता है कि सूर्य के ये पुत्र थे, सब सूर्य के समान थे, जमुना पुत्री और ये लोग पुत्र। तो भीष्मानु बाबा और चंद्रभानु बाबा, चंद्रभानु बाबा के पत्नी के गर्भ में चंद्रावली थी और भीष्मानु बाबा कृता के गर्भ में राधिका थी। वही बिंदवासिनी जोग माया भगवान का लीला करने के लिए इन लोगों को उनके गर्भ से ला करके और विंध्याचल के पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को जब जोग माया ने कह दिया था कि 8 बालिकाएं होगी, इसमें से प्रथम जो होगी राधा, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, राधा का पहले का नाम, एनीवे, तो उससे जो विवाह करेगा वह महादेव विजयी होगा और राजेंद्र होगा। तो कंस तुरंत पुत्रा को बोल दे जाओ लेकर के आओ, इन लोगों को लेकर के आओ फटाफट। गया कंस, सॉरी पुत्रा गई, जितनी पुत्रियां थी उन लोगों को उठाई और चलते बने। भीष्मानु बाबा सॉरी विंध्याचल को ये पुत्री हुई थी बड़ा तपस्या करने के बाद, आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे वहां पर स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, जात संस्कार कर रहे थे, वे लोग राक्षस मारण नाम का एक यज्ञ किए जिससे पुतना के शरीर में बहुत ज्वाला उत्पन्न हुआ, बहुत ज्वाला उत्पन्न हुआ। और आते आते चंद्रावली को, उनके हाथ से चंद्रावली गिर गई विदर्भ में, भीष्मक को प्राप्त हुई विदर्भ नरेश को, फिर वहां से भागी जमुना जी में राधा रानी और विशाखा गिर पड़ी और अन्य जो थी गोपियां प्रधान गोपियों में से ललिता और चंद्रा चंपकलता इत्यादि वो अन्यत्र गिरी। जोगमाया पूर्णमासी अन्य गोपियों को ला करके और जो कृतदा की दासी थी उनको दे दी। विशाखा को ला करके मुखरा को दी जो कि कृतदा की मां थी। नंद बाबा असरी वृषभानु बाबा को एक पुत्र था श्रीदाम, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। उनके पत्नी की बड़ी इच्छा थी कि एक पुत्री हो। एक दिन विश्वभान बाबा रावल गोचारण करने आए थे, वहीं पर स्नान कर रहे थे। स्नान कर करके गंगा जमुना जी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सुंदर एक सोने का कमल आ रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ सोने का कमल देख करके। जब कमल उनके तरफ ही आ रहा था, जब कमल नजदीक आया तो देखे वहां पर एक नवजात शिशु है, लेकिन है अंधी। वो अंधी बहरी थी राधा रानी, जन्म ली तो अंधी और बहरी थी। आश्चर्य हुआ, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। उन्होंने उस लड़की को स्वीकार किया, लिया और कृतदा जी को दिया। एक दिन नारद जी प्रभु को देखने के लिए आए, कृष्ण का दर्शन किए नंद बाबा के यहां, जसना मैया के यहां, कुछ दिन वहां निवास किए। तदुपरांत श्रीमती राधिका के खोज में वे निकल पड़े। वे आए ब्रह्मानु बाबा के यहां बरसाना। जब बरसाना आए तो ब्रह्मानु बाबा उनका खूब खातिर बातिर किए, सेवा सत्कार किए। और वे तो आए थे श्रीमती राधिका का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके संतान कितने हैं, सब बच्चे सब ठीक हैं ना। तो श्री रामा को बुलाए और कहे मेरा पुत्र है। उसको देख करके नारद जी बड़े खुश हुए, अरे वाह वाह क्या सुंदर आपका पुत्र है, यह पुत्र कृष्ण का अनुचर होगा, कृष्ण का सेवक होगा। तो सुबाल, श्रीदाम, मधुमंगल ये सब सेवकों में से, कृष्ण के सखाओं में से एक प्रधान है। तो श्रीदाम प्रधान मित्र हैं कृष्ण के। फिर उन्होंने कहा कि आपको कोई पुत्री भी है नहीं, और कोई संतान है? हां एक पुत्री है, लेकिन वो डेफ एंड डम है, देखती नहीं है। कहा मैं उसको देख सकता हूं? कहा जरूर आइए, शायद ऋषि का कृपा हो जाए तो ठीक हो जाए। तो जिस रूम में श्रीमती राधिका थी उस रूम में गए नारद जी, दरवाजा बंद कर दिए। तदुपरांत श्रीमती राधिका को देखे और देख करके समझ गए कि ये कौन है। और उसके बाद वे कृष्ण प्रेयसी श्रीमती राधिका का प्रणाम करने लगे। तब तक आंचर गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुती देवी प्रणवामी हरि प्रिय, हे हरि प्रिय आपको मेरा प्रणाम है। जब खूब प्रणाम किए तब श्रीमती राधा रानी अपने स्वरूप में आई, 14 साल की ज्योति, और साथ में अष्ट गोपियों का भी नारद जी वहां पर दर्शन किए। नारद जी पुनः प्रणाम किए उस रूप को और वह रूप अंतर्ध्यान हो गया। फिर नारद जी आकर के ब्रह्मानु बाबा कहे कि आप चिंता मत कीजिए, यह ब्रजेश्वरी होगी, यह राशेश्वरी होगी। राधिका के समस्त गुणों का बखान नारद जी किए, पूरा संसार इनके जितने भी आह्लाद देने वाली हैं उन आह्लाद देने वालों में सर्वोपरि होगी। तीन आह्लाद देने वाली हैं, माया देवी, लक्ष्मी देवी और राधा रानी। माया देवी यहां आह्लाद देती है माया वस्तुओं को दे करके, देह दे करके। लक्ष्मी जी आह्लाद देती हैं कुछ लोगों को, रुपया पैसा दे करके लोग खुश रहते हैं। और राधा रानी आह्लाद देती है भक्ति दे करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। इस प्रकार से राधा रानी का जन्म इस धराधाम पर हुआ। और मैं ये भी कहा था, समय बीते रहा, अभिषेक भी है, मुझे आकर नहाना भी है, तो कहा था कि एक दो कहानी बताऊंगा, लेकिन एक कहानी बताऊंगा, ठीक है ना, ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। ब्रज की जो गोपियां हैं, विष्णु है चला गया है ना, ब्रज की जितनी गोपियां हैं उन लोगों में होड़ लगा रहता है कि कृष्ण का अच्छा चाहता कह सेवा कर सके। जैसे हम लोग भी वैष्णव से मिलते हैं तो कहते हैं प्रभु थोड़ा कृपा कीजिए कि कृष्ण का हम अच्छा से सेवा कर सके, यही कहते हैं ना, यही भक्त का स्वभाव है। तो ब्रज की गोपियां में भी यही इच्छा था। दुर्वासा जी यमुना के उस पार रहते थे। एक दिन गोपियों ने निर्णय किया कि दुर्वासा जी बड़े वरदान देने और श्राप देने बड़े श्रेष्ठ हैं। श्राप भी सॉलिड श्राप देते हैं और सॉलिड वरदान देते हैं। चलो आज हम लोग चलते हैं, दुर्वासा मुनि को खुश करेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, खुश हो जाएंगे, दुर्वासा जी तो हम लोगों को अच्छा वरदान देंगे कृष्ण का सेवा करने के लिए। मीटिंग हो गया, सब गोपियां रेडी हो गई थी, सब तैयार थे। अब यमुना किनारे गए तो देखे यमुना जी में बाढ़ आया हुआ है, पानी आया हुआ है, तो कोई तैरना, स्विमिंग पूल था नहीं स्त्रियों के लिए उस समय, आजकल तो स्त्रियां स्विमिंग पूल में जाती है, तो तैरना जानती नहीं थी गोपियां। अब जाए कैसे, यमुना जी को पार कैसे करे, बड़ी परेशानी में थे। कृष्ण उधर से घूमते घामते कृष्ण आ गए, देखे इन लोगों का मुंह लटका हुआ है, कहे क्या बात है भाई, आप लोग बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है। उन्होंने अपना पूरा प्लान बताया कि हम लोग दुर्वासा मुनि का दर्शन करने जाना चाहते हैं। कृष्ण तो जानते क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन पूरा बात नहीं बताई, तो पूरा वो नहीं बताते, विपुर नहीं बताए, हम दुर्वासा मुनि का दर्शन करने जाना चाहते हैं। तो कहा जाओ, अच्छा है, तो मुंह क्यों लटकाई हो। कहा कैसे जाए, देखने जाओ यमुना में कितना पानी है, कैसे जा सकते हैं। अब गोपियां घुटना टेक दी कृष्ण के पास, कहा कृष्ण कृपा करो, बताओ भाई कोई रास्ता बताओ, तुम तो बड़ा जोगी हो कुछ भी कर सकते हो, रास्ता बताओ हम जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना जी का पूजा करो और मन में कहो कि हे यमुना जी यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। गोपियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी, अब बताओ तो हे कृष्ण कैसे बाल ब्रह्मचारी हो गया, हमारे साथ में रास खेलता है, हमारे साथ में खेलता रहता है, ये ब्रह्मचारी कैसे हो गया। तो गोपियों ने कहा कृष्ण तू ब्रह्मचारी कब से हो गया, तुम्हारा 16,108 गोपियां हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तू ब्रह्मचारी कब से हो गया। कहा कब से हो गया मत पूछो, जाओ तुम प्रार्थना करो, यदि यमुना जी रास्ता दे देगी तो मानोगी ना। कहां गए सब, प्रार्थना किए, खूब प्रार्थना किए यमुना जी को, तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो गोपियों का आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है, कृष्ण ब्रह्मचारी हो गया। उस पार गई, खूब फर्स्ट क्लास शुद्ध घी दूध इत्यादि का बना हुआ फर्स्ट क्लास स्वीट राइस बनाई गोपियां, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को स्वीट राइस अच्छा लगता है। खूब स्वीट राइस बनाई और स्वीट राइस खिलाई, दुर्वासा मुनि बड़े खुश हो गए, पेट भर गया, कह बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या वरदान चाहिए तुम लोगों को। क्या ऋषि आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप तो जानते हैं हम लोग क्यों आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि एव मस्तु, तुम लोगों को कृष्ण में अनन्य सेवा का भाव बना रहे। बड़ी सब गोपियां खुश थी कि अब आशीर्वाद हो गया। अब जा रही थी फिर देखी जमुना जी में बाढ़ आ गया है, पानी आया हुआ है, अब क्या करें। तो किसी ने कहा अरे बोलो जमुना जी को कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। अब एक गोपी गई प्रार्थना कर रही, कृष्ण यदि फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दे दो। यमुना जी रास्ता देने का नाम ही नहीं ले रही है, काहे मंत्र गड़बड़ हो गया, ये तो केवल आने का मंत्र था, जाने क्या किया जाए। अब भागते भागते फिर दुर्वासा जी के पास गई कि ऋषिवर आप क्षमा करना, अंधेरा हो रहा है, जाना है घर, हम लोग कुंवारी गोपियां हैं, यहां रहना उचित नहीं है, लेकिन यमुना जी में बहुत बाढ़ आया हुआ है, क्या करें। दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ और यमुना जी से प्रार्थना करो कि दुर्वासा मुनि यदि भूखे हैं तो यमुना जी रास्ता दे दो। गोपी अरे अब इतना फर्स्ट क्लास स्वीट राइस में वो खिला है, ये भूखे कैसे हो गए, ये भूखे कैसे हो गए। लेकिन कृष्ण से तो बात कर सकती थी, कहते तो रास रजदा तो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है, लेकिन दुर्वासा मुनि से बात नहीं कर सकती थी, नहीं तो श्राप हो सकता था। तो सीधे भागी गोपियां आई, आकर के यमुना जी से कहे कि हे यमुना जी ये दुर्वासा मुनि कुछ भी न खाए हो, भूखे हो, तो कृपा करके रास्ता दे देना। यमुना जी रास्ता दे दी और पार हो गए। जब बारह गोपियां तो सबके दिमाग में एक ही प्रश्न उठ रहा था, ये झूठा बात पर ऐसे कैसे हो गया? कृष्ण गोपियों के साथ में रास रचाता है, ये ब्रह्मचारी कैसे हो गया? और दुर्वासा जी को अभी हम लोगों ने इतना पुआ पकवान स्वीट राइस खिलाया और कहते मैं भूखा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? चक्कर में पड़ गई। फिर कृष्ण घूमते घूमते गांवों को पानी पिलाने के लिए आए थे तो बांसुरी बजाए, सब गोपियां भाग कर गई कृष्ण के पास। तो कृष्ण से पूछा, कृष्ण बड़ा जटिल समस्या है। कहा अच्छा क्या समस्या है? दुर्वासा मुनि सोल्व नहीं किए? कहा नहीं नहीं नहीं, ये समस्या केवल आप ही सोल्व कर सकते हो। कहा क्या समस्या है? कहा कृष्ण हम जानते हैं कि तुम उल्टा हो, तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, लेकिन जब हम लोगों ने यह बात कहा कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हो तो जमुना जी रास्ता दे दो, तो जमुना जी रास्ता दे दी, ये जानते हुए भी कि तू उल्टा है। उधर दुर्वासा जी को भर पेट खिलाया, आते समय कहना पड़ा कि दुर्वासा जी यदि भूखे हो तो जमुना जी रास्ता दे दो, ये उल्टा कैसे हो गया? कृष्ण पड़े मुस्कुराए और बाद में क्या, बैठो, ये प्रश्न का उत्तर लेना है तो शांति से सुनो, बैठ जाओ सब लोग। कृष्ण प्रवचन करना शुरू किया, कहे कि देखो, किसी वस्तु की स्वीकृति मन से होती है और यदि मन से स्वीकृति होती है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, और जो आसक्ति होती है वो ठीक चीज नहीं है। तुम लोग मुझ मेरे साथ रास करती हो, दिल से उसे स्वीकार करता हूं लेकिन मन से स्वीकार नहीं करता हूं। मन से स्वीकार करूंगा आसक्ति हो जाएगी, तुम लोग मन से करते, तुम्हें आसक्ति है, मुझे आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं। वैसे ही दुर्वासा मुनि, तुम लोगों ने खिलाया, उन्होंने कहा पेट भर गया, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किए तो मन से नहीं खाए हैं, मतलब वो आसक्त नहीं बनना चाहते हैं। तो साधु लोगों को किसी कार्य में, भक्ति ही क्यों ना हो, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, एकमात्र आसक्ति होनी चाहिए। तो कैसे मैं, कृष्ण में भी आसक्त मत रहो, कृष्ण में भी आसक्ति मत रखो, केवल कृष्ण के सेवा में आसक्ति रखो बस। और जो मन कृष्ण के सेवा में आसक्त रहेगा वहां पर आनंद नहीं ढूंढेगा, आनंद तो बाई प्रोडक्ट है सेवा का, मिलेगा। यदि भगवान का नाम जपते रहोगे तो आनंद मिलेगा, यदि आनंद नहीं मिल रहा है तो नाम जप ठीक से नहीं हो रहा है, कृष्ण का सेवा ठीक से नहीं हो रहा है। कृष्ण का सेवा ठीक होगा तो हम महामना बन जाएंगे और केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार से बहुत सी कथाएं हैं, एक और संक्षिप्त में कथा कहता हूं, ठीक है ना, पांच मिनट और। एक समय कृष्ण को राधा रानी को देखने का विचार आया, बड़े बेचारे व्यथित हो गए थे कि राधा रानी का दर्शन नहीं कर पाया, देखा नहीं। जेठ की दोपहरी थी, प्रेम की ऐसी ही प्रणाली है कि प्रेम देखता नहीं है कि जेठ की दोपहरी है कि बरसात की मूसलाधार वर्षा है कि जाड़े का ठिठुरने वाला ठंडक है, प्रेम तो प्रेमी को देखता है। कृष्ण जावट के लिए निकल पड़े, दोपहर का 11-12 बजे समय था, बहुत चिलचिलाती धूप थी, कृष्ण के शरीर पर छाले, कृष्ण ऐसे भी काले हैं, थोड़ा छाले जैसे पड़ गए थे धूप से। जटिला देखी राधा रानी की सास, कहते अरे काना बेटा तू इधर क्या कर रहा है, ये दोपहरिया हो गया है, ये तू यहां क्या कर रहा है, धूप लग जाएगी, अरे आओ आओ इधर इधर इधर। कृष्ण ने कहा कि दादी क्या करूं, आज सुबह गाय दूध रहा था, एक बछड़ा बिचक गया और भाग गया, उसको मैं खोज रहा हूं सुबह से, मिल ही नहीं रहा, तो खोते खोते यहां आ गया। जटिला ने कहा कि बेटा अभी मत जाओ, वो बहुत धूप है, लू लग जाएगी, आओ आराम करो, शाम को जाना, आओ। कृष्ण को लाए, जटला बेचारी थोड़ा बुढ़ी थी, कुटिला उस समय नहीं थी वहां पर, नहीं तो गड़बड़ कुछ करती। जटला राधा का आग्रह, राधा बेटी इधर आओ, हमारे घर में नंद का लाला आया है, बड़ा अच्छा लड़का है, थोड़ा पानी लेकर के आओ, उसे पानी पिलाओ। तो राधा रानी भी कृष्ण को देखना चाहती थी और कृष्ण भी दोनों तरफ रहे थे एक दूसरे को देखने के लिए। तो राधा रानी पल्लू ढांक करके ढांक देख रही है, पल्लू ढांक करके और पानी लेकर के आ रही है, पानी लेकर के आ रही है। न तो कृष्ण ग्लास को देख रहे हैं, न राधा रानी ग्लास को देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। राधा रानी ग्लास दिया पानी और कृष्ण कहां है, पड़ा छुट गया, बम पानी गिर गया नीचे। जटलन का बेटा थोड़ा देख कर करो, अतिथि है, काना है, ब्रज का राजा है, राजा का बेटा है, थोड़ा अच्छा सेवा करो, इसको बेचारा कितना प्यास, देखती नहीं काला हो गया है, इतना धूप लगा है, जाओ जाओ अच्छा पानी लेकर के आओ। फिर गई, पानी लेकर के आई, दो तीन बार हो गया पानी गिरते गया। जटला बेचारी बुढ़ी हो गई, थोड़ा देखने में तकलीफ था उसको भी और बाहर थोड़ा धूप था, तो कहा ठीक है लाओ मुझे दो, मैं पिलाती हूं। तो जटला पानी लाई, भगवान तुरंत कहा देखा ऐसे पानी पिलाना चाहिए, भगवान एक गिलास पी लिए, कहा अब तुम पिलाओ, इस समय कहा। तो अब राधा रानी लेकर के आई तो भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया राधा रानी का और बाद में पानी पिए। फिर कुछ समय के बाद कहे कि खिलाओ पिलाओ खाने पीने के लिए, फिर वैसे ही घूंघट। तो खिलाई पिलाई, शाम हो गया था, कृष्ण कहा कि अब मैं जाऊंगा। कहा कि नहीं 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 रुको, अरे थोड़ा दूध दूध पीकर जाओ, हमारे घर में गाय है, मैं जानता हूं तुम्हारे जसदा मैया तुम्हारे लिए अच्छा गाय रखी, वैसा गाय नहीं है, लेकिन हमारे घर में अच्छी गाय है, अब आए तो दूध दूध पीकर के जाओ। देखो भाई ग्वाल बाल लोग है, गांव में रोटी खिलाना उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन दूध छाछ ए घी मक्खन ये असली चीज खिलाना मतलब ए। आजकल तो चाय पिलाते हैं लोग, चाय चाहिए बारा चाय पी लो, वो भी दूध का मना होता है, आज का बिना दूध का चाय पिलाते हैं। एनीवे कहते हैं ग्रीन टी है? ग्रीन टी देते हैं। एनीवे तो राधा रानी वहां पर थी और आप लोग जानते हैं गाय को पहले बछड़ा खोला जाता है, जब बछड़ा गाय के स्तन का स्पर्श करता है तब दूध निकलता है। तो कृष्ण कहे कि मैं दूंगा लेकिन दादी आप बछड़ा को पकड़ो। यशोदा सोची कि सॉरी जटला समझे कि अरे मैं बुढ़ी हूं मैं क्या पकड़ू, राधा आ बेटा ये बछड़ा पकड़ ले, कान्हा दूध दुहेगा। तो फिर वैसे घूंघट निकाल करके तो जटला कहती है राधा ये क्या नखरा तू करे घूंघट निकालने का, अरे तू इसकी चाची है, तू कान्हा की चाची है, ये तुम्हारा क्या हुआ भतीजा, क्या हुआ भाई का बेटा है, भांजा नहीं भतीजा, भतीजा तुम्हारा है, ये तुम्हारे बेटे के समान है, इसे क्या घूंघट निकालना है, हटाओ घूंघट। तो कृष्ण तो वही चाहते थे घूंघट निकालने। तो जटिला भले जो भी समझे घूंघट निकाल राधा रानी, गाय का बछड़ा पकड़ी। अब जटिला बैठी है पीछे, दिखाई भी कम पड़ रहा था, कृष्ण यहां गाय दूर रहे हैं, राधा रानी बछड़ा लेकर साइड में है, तो जटिला को जटिला नहीं देख रही थी राधा रानी को, क्योंकि गाय का पीछे का पैर दिखाई पड़ रहा था जटिला को, लेकिन कृष्ण राधा रानी को देख रहे थे। तो कृष्ण राधा रानी देख रहे थे और राधा रानी कृष्ण को देख रहे थे, इधर गाय दूर रहे हैं तो दूध बर्तन में कम और नीचे ज्यादा गिर रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब दूते गए दूते गए दूते गए, बेचारी गैया भी बड़ी खुश थी कि श्याम सुंदर आज मुझे दूह रहे हैं, उसके दूध उसके स्तन में इतना दूध हो गया, इतना दूध हो गया कि बहुत सारा दूध गिर गया, फिर बाल्टी भर गया। बहुत देर के बाद श्याम सुंदर और राधिका एक दूसरे को देखे, उसके बाद गरम गरम कृष्ण दूध पिए और वहां से चलते बने। तो इस प्रकार छोटी छोटी कहानियां हैं राधा रानी के संबंध में। भागवतम में तो उतना वर्णन नहीं है, लेकिन हम लोग कृतज्ञ हैं सर गोस्वामियों का, इन गोस्वामियों ने लिखा, जैसे रूप गोस्वामी ने बिरहणी राधे, क्या सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा है, वैसे ही जीव गोस्वामी का उज्जवल नीलमणि गोपाल चंपू, कवि कर्णपूर्ण का आनंद वृंदावन चंपू, तो ये सब जो ग्रंथ हैं बड़े अच्छे हैं, जिसमें राधा कृष्ण के प्रणय विकृति को दर्शाया गया है और चेतन चरतामृत में। तो थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। अरे हाँ, एक हमारा भक्त है कानपुर में, उसका नाम है जय गोविंद प्रभु, तो उसने एक बड़ा सुंदर मैसेज भेजा है, मैं सोचा आप लोगों से पढ़ लूं, है वो राधा रानी के विषय में है, ठीक है ना, सब लोग सुनना ध्यान से, जो भी लिखा है थोड़ा उसको लिखने में गलती हो गया है, लेकिन सिद्धांत के रूप में ठीक ही है, मैं सिद्धांत देखता हूं। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त सी राधा, कृष्ण पका गए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें काना काना कहके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया, फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राजा, जब जब भी तुम्हारी याद आती है, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारा याद आया और न आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहां थे, जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको, कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम, अब राधा नहीं बोल रही, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए, जमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और दसों उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कन्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी, और कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है यह बताने लगी। कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता, युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता, युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रहता है पर किसी को दुख नहीं देता, आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न टूट दूरदृष्टा हो, गीता ऐसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया, सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है, आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा था अर्जुन, आपकी प्रजा को ही अपनी प्रजा को ही मार रहा था, अपनी प्रजा को मरते देख, आपकी ही प्रजा को मार रहा था, अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे हर घर हर मंदिर में, मेरे साथ कहीं खड़ी नजर नहीं आओगे। आज भी मैं मानता हूं, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। इसमें सिद्धांत नहीं है, लेकिन सही लीला का दर्शन कराया है। बड़ा अच्छा। एनीवे, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे।